नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, आपको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी अध्ययन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने यीशु के कफरनहूम वापस आने और मत्ती को बुलाने के बारे में देखा था। आज हम उसी के आगे के पदों पर विचार करेंगे। तो आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 9 अध्याय और 15 पद को निकालें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है क्या वे शोक कर सकते हैं? परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा और तब वे उपवास करेंगे। यद्यपि आज विश्वासियों के लिए उपवास एक सच्चा महत्व रखता है, हमें उपवास के विषय में कोई भी आज्ञा नहीं दी गई है और उपवास इस विचार के साथ होना या करना चाहिए कि हम अपने को परमेश्वर के सामने असहाय पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी दया और सहायता की आवश्यकता है। उपवास करने के पीछे हमारा यही एक विचार होना चाहिए। अब यीशु मसीह की सुनिए, जब वो पुराने नियम की व्यवस्था से नए नियम के अनुग्रह प्रबंध किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, इसे स्पष्ट कर रहे हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 16 और 17 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, पुराने वस्त्र पर कोरे कपड़े का पैबंद कोई नहीं लगाता, क्योंकि पैबंद उस वस्त्र को खींच लेता है और वह पहले से भी अधिक फट जाता है। न ही लोग पुराने मस्कों में नया दाखरस भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मस्कें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और दोनों ही सुरक्षित बने रहते हैं। हमारे प्रभु यह कह रहे हैं कि पुरानी वाचा, जो पुराने व्यवस्था के अनुसार प्रबंध था, समाप्त हो रहा था और वह इसको बढ़ावा देने या उस प्रबंध के अधीन निरंतर रहकर कार्य करें यह बताने नहीं आया। और वास्तव में वह इसलिए आया कि वह नया वस्त्र उपलब्ध कराए, और यह नया वस्त्र धार्मिकता का वस्त्र था और वह उसे देता है जो उस पर विश्वास करने से अधिक कुछ नहीं करते। उन दिनों में चमड़े का मस्क होता था जो अंगूर के रस रखने के लिए प्रयोग किया जाता था और उसे जानवरों के चमड़े से बनाया जाता था। आप उसे देख सकते हैं कि जब नया अंगूर का रस नए चमड़े के अंगूर का रस रखने वाले मस्क में डाला जाता है तो वो फैल जाता है, परंतु पुराना मस्क अपने फैलने की सीमा तक पहुंच चुका है, तो वह इसलिए जब उसमें नया अंगूर का रस डाला जाता है तो फट जाता है और अंगूर का रस बहकर बेकार हो जाता है। हमारे प्रभु यह कह रहे हैं कि मैं पुराने वस्त्र में पैबंद लगाने नहीं आया हूं, मैं नया वस्त्र देने आया हूं, वह जो पूर्ण रूप से नया है। यह बहुत ही मूलभूत था। यूहन्ना अपने सुसमाचार में इसे संक्षिप्त करते हैं और जब वे कहते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय के 17 पद में, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई पर अनुग्रह और सच्चाई से तो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मित्रों, आगे यीशु रोगी स्त्री को चंगा करते हैं और मृत बच्चे को जीवित करते हैं। अब हम 8वें और 9वें चमत्कार में आते हैं, जो बात करने के तरीके में जुड़े हुए हैं। दोनों ही चमत्कार चंगाई के हैं और यह बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 18 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जब वह उनसे ये बातें कह ही रहा था तो देखो आराधनालय का एक अधिकारी आया और उसे दंडवत करके कहने लगा, मेरी पुत्री अभी अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। लुका अपने सुसमाचार में हमें बताते हैं कि जब यह अधिकारी पहली बार यीशु के पास आया तो यह कहने के लिए आया कि वह उसकी बेटी को चंगा करे। हम लुका 8 अध्याय उसके 41 और 42 पद में से पढ़ सकते हैं। और देखो याइर नाम का एक मनुष्य आया जो आराधनालय का अधिकारी था। वह यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और उससे अपने घर चलने के लिए अनुरोध करने लगा, क्योंकि उसकी एकलौती बेटी जो लगभग 12 वर्ष की थी मरने पर थी। और जब उसका पिता यीशु से बातें करने के लिए रुका हुआ था, तब एक सेवक आया और उसने उसे बताया कि वह छोटी लड़की मर गई है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 19 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु उठा और इसके पीछे चल पड़ा और उसके चेलों ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही यीशु और उसके शिष्य याइर के घर जाने के लिए तैयार हुए, एक बड़ी भीड़ उसके चारों ओर जमा हो गई। हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 20 पद में आगे पढ़ते हैं, और देखो एक स्त्री ने जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, उसके पीछे आकर उसके चोगे का किनारा स्पर्श किया। आप इस परिच्छेद पर ध्यान देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। यह कितना प्रभावशाली है। यह छोटी लड़की 12 वर्ष की है और यह स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था वह भी 12 वर्ष से पीड़ित थी। यहाँ पर 12 वर्ष की छोटी लड़की के जीवन से 12 वर्ष की ज्योति जा रही है और 12 वर्ष के अंधकार का खात्मा होने जा रहा है, और वह ज्योति इस स्त्री के जीवन में फैलने वाली है। यहाँ पर ज्योति और अंधकार का विरोधाभास है। इसके पहले पद में ध्यान दें कि स्त्री ने क्या किया। यीशु ने उसे नहीं छुआ जैसे उसने कई अन्य चमत्कार को करते समय किया, परंतु स्त्री ने उसे छुआ। यह किसी प्रकार का कोई नियम नहीं था जो उसके जीवन में चंगाई लाया, परंतु यह उसका विश्वास था। हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 21 और 22 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही स्पर्श कर लूं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उससे देखा और कहा, पुत्री साहस रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। डॉक्टर लुका इस चमत्कार के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। वह हमारे प्रभु की प्रतिक्रिया को उस स्त्री के छूने के प्रति और उसके प्रत्युत्तर का वर्णन देते हैं। तब यीशु इस स्त्री को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और याइर के घर की ओर बढ़ने लगते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब यीशु उस अधिकारी के घर पहुंचा तो उसने बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को कोलाहल करते देखा। उसने उनसे कहा, चले जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। जब यीशु घर पहुंचे तो लोग पहले से ही लड़की के लिए शोक कर रहे थे। उसने उनसे कहा कि यह लड़की सिर्फ सो रही है, मरी नहीं है। तब लोग उस पर हंसे। किसी ने भी उस पर यह विश्वास नहीं किया कि यीशु उन्हें जिंदा कर सकते हैं, परंतु वह लड़की की ओर बढ़ते गए। तब हम मत्ती 9 अध्याय उसके 25 पद में पढ़ते हैं, परंतु जब भीड़ बाहर निकल गई तो यीशु भीतर गया और उसने हाथ पकड़कर लड़की को उठाया और लड़की उठ बैठी। मित्रों, यह पहली घटना है जो हमें इस सुसमाचार में मृतक को जिलाने के बारे में मिलती है। तीन ध्यान देने योग्य घटनाएं हमें पढ़ने के लिए मिलती है। तीन मुर्दों को जिलाने के बारे में तीन ध्यान देने योग्य घटनाएं हमें पढ़ने को मिलती है। फिर से लुका जो मत्ती से अधिक वर्णन करते हैं, लुका इस बात को जोड़ते हैं कि उसने छोटी लड़की से इस प्रकार से बात की, हे छोटी लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। मृतकों को जिलाने की विधि में यीशु ने एक ही विधि का प्रयोग किया, अर्थात हमेशा एक ही तरीका था। वह सीधे तौर पर उस व्यक्ति से बात करते थे। लहू बहने के रोग से स्त्री को चंगा करने और याइर की बेटी को मृतक में से जिलाने के बाद यीशु की चर्चा चारों ओर फैल गई। हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 26 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, यह समाचार उस सारे प्रदेश में फैल गया। यीशु दो अंधे व्यक्ति की आंखों को खोलते हैं। अब 10वां चमत्कार दो अंधे व्यक्ति के बारे में है जिन्होंने यीशु मसीह का अनुसरण किया। मत्ती 9 अध्याय उसके 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह चिल्लाते और पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। मित्रों, ध्यान दीजिए कि ये दो अंधे पुरुष उसे दाऊद की संतान कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस सुसमाचार में यह अर्थपूर्ण है जो उसे एक राजा के रूप में प्रस्तुत करती है। आगे हम मत्ती 9 अध्याय उसके 28 से 30 पद में पढ़ते हैं, और जब वह घर में प्रवेश कर चुका तो वे अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने यह कहते हुए उनकी आंखों को स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए उनसे कहा, देखो या किसी को ना बताना। मित्रों, यहाँ पर एक दूसरी विशिष्ट बात है जहां पर यीशु उन पुरुषों से कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को नहीं बताना। इसी बात को उसने कोढ़ी से भी कहा था। यीशु के ऐसा करने व कहने के पीछे अनेक कारण थे, परंतु इस हिस्से में एक कारण को स्पष्ट किया गया है कि उसके चमत्कार के प्रचार के कारण लोगों का दबाव उसके ऊपर आने लगा था और वास्तव में वह उसके सेवकाई में रुकावट का कारण बन रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 31 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु उन्होंने जाकर समस्त प्रदेशों में उसकी चर्चा की। मित्रों, ये दो पुरुष जिनकी आंखें ठीक हो गई थी अपने आनंद को नियंत्रित नहीं कर सके। उन्होंने जाकर समस्त प्रदेश में उसकी चर्चा की। यीशु एक गूंगे और दुष्ट आत्मा से पीड़ित को भी चंगा करते हैं। अब हम 11वें चमत्कार में आते हैं। यहां पर और एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को चंगा किया जाता है। यह तीसरी घटना है जो दुष्ट आत्मा से चंगाई के बारे में हमें मत्ती 8 से 9 अध्याय में मिलती है। हम मत्ती 9 अध्याय उसके 32 और 33 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जब वे बाहर जा रहे थे तो लोग एक गूंगे को जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था यीशु के पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ विस्मित होकर कहने लगी, इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मित्रों, यहां पर फरीसियों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, और आगे हम पढ़ेंगे मत्ती 9 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, परंतु फरीसी कहने लगे, वह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उसने गूंगे को बोलने की और अंधे को देखने की और लंगड़े को चलने की सामर्थ्य दी है। उन्होंने उस पर दोष लगाया कि वह यह सब कुछ शैतान की शक्ति से करता है। मत्ती 9 अध्याय के 35 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यीशु सब नगरों और गांवों में जा जाकर उनके आराधनालयों में उपदेश देता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। मित्रों, राज्य का सुसमाचार परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दो सुसमाचार हैं, केवल एक ही सुसमाचार है, परंतु इसके कई पहलू हैं। राज्य का सुसमाचार एक घोषणा थी कि परमेश्वर का राज्य निकट है। इसका मतलब यह हुआ कि राजा से मिलने के लिए तैयार हो जाएं, अर्थात तैयार रहें। इसे हृदय की स्थिति की आवश्यकता थी, जो उसे स्वीकार करे और राजा का अनुसरण करे, जो बाद में क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। मित्रों, हम बार बार इसे देखते हैं कि मत्ती इस सूचना को हमें देते हैं कि उन दिनों में हजारों लोग थे जिन्हें चंगा किया गया था, और यही कारण था कि शत्रु ने कभी भी इस वास्तविकता के विषय प्रश्न नहीं किया कि उसने चमत्कार किया है, क्योंकि वो बहुत ही स्पष्ट था। मित्रों, फिर से मैं कहता हूं कि आज हमारे दिनों में बहुत से लोग हैं जो यह दावा करते हुए उत्साहित रहते हैं कि कुछ निश्चित लोगों के पास चंगाई का वरदान है। मैं व्यक्तिगत रीति से सोचता हूँ कि हमारे दिनों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास यह वरदान है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैं 10,000 रुपए देने को तैयार हूँ जो आकर यह प्रमाणित करे कि वह विश्वास के द्वारा चंगाई देने वाले व्यक्ति के द्वारा ठीक हुआ है। आप सोचेंगे कि चंगाई सभा के समय जो सैकड़ों विश्वास से चंगाई पाने की खबर देते हैं, उनमें से केवल एक ही वास्तविक होती है। मैं आपके साथ ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने यह उम्मीद की कि कोई मनोविज्ञानी तरीके से चंगाई पाया हुआ मेरे पास आएगा, पर कोई नहीं आया। मित्रों, मैंने किसी खास संप्रदाय के अगुओं से पूछा कि जिसने किसी को 10,000 रुपए इसलिए दिए हैं कि उसने यह प्रमाणित किया है कि वह एक विश्वास से चंगा करने वाले के द्वारा ठीक हुआ है, और उसका अनुभव कैसा रहा। उसमें से एक ने मुझसे कहा कि उसके विरोध में बहुत से केस दर्ज किए गए हैं उन लोगों के द्वारा जो उससे रुपया प्राप्त करना चाहते थे। कोई भी नहीं है जो अदालत में जाकर यह प्रमाणित कर सकता है कि वह विश्वास से चंगा देने वाले के द्वारा ठीक हुआ है। मित्रों, इसके विपरीत हजारों लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के समय में चंगाई प्राप्त की, और मैं समझता हूं कि उनमें से कोई ना कोई आज भी होगा। क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं? आइए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप वास्तव में किसी को जानते हैं जो किसी स्त्री या पुरुष के द्वारा चंगा किया गया है? मुख्य बात यह है कि यीशु मसीह एक महान वैद्य हैं और मैं जानता और विश्वास करता हूं कि वह आज भी चंगाई दे सकते हैं जैसे उन्होंने कल किया था। मेरा उस पर पूरा भरोसा है। अब आइए मैं अपने आप को स्पष्ट कर दूं कि हमें सबसे अच्छी चिकित्सा की सहायता की खोज करनी चाहिए जो वर्तमान में उपलब्ध हो सकती है, लेकिन हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि डॉक्टर अपने तक ही सीमित है। जो भी हो, प्रभु यीशु के कोई सीमा नहीं है। हम भरोसा रख सकते हैं कि वह हमारे साथ अपनी पूर्ण इच्छा के अनुसार व्यवहार करेंगे और जो भी होता है उसके लिए हमें उसको आदर देना चाहिए। हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 36 पद में आगे पढ़ते हैं, और जनसमूह को देखकर उसे लोगों पर तरस आया क्योंकि उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि तरस से भरे इस वाक्य के साथ इस अध्याय का समापन होता है, जो आश्चर्यजनक है कि नहीं? परमेश्वर के आदर्श राजा और शासक चरवाहे थे। मूसा और दाऊद दोनों ही परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने से पहले चरवाहा थे। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे, तो प्रार्थना करें कि वह उन्हें चरवाहे का हृदय दे। प्रार्थना करें कि प्रभु आपको खोए हुए लोगों के लिए तरस से भरा हुआ हृदय दे। हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 37 और 38 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पकी फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। अपने शिष्यों से ये बातें कहने के बाद अब वह इन्हें आगे भेजते हैं। मेरे प्रिय मित्र, जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह हमेशा अच्छा होता है कि आप स्वयं से करें। जब हमारे प्रभु ने अपने शिष्यों से मजदूरों के लिए प्रार्थना करने को कहा तो उसने उन्हीं लोगों को भेज दिया जिसे उसने प्रार्थना करने के लिए कहा था। वास्तव में यह बहुत ही मजेदार बात है। जॉर्जिया के मेथोडिस्ट कलीसिया के एक बुजुर्ग बिशप ने कई वर्ष पूर्व इस प्रकार से कहा था, जब एक व्यक्ति मकई के फसल के लिए प्रार्थना करता है तो प्रभु उससे उम्मीद करते हैं कि वह कुदाली के साथ आमीन कहे। मैं हमेशा यह विश्वास करता रहा हूं कि आप किसी ऐसे वस्तु या चीज के बारे में प्रार्थना न करें जब तक कि आप भी स्वयं इसे करने की इच्छा नहीं रखते हैं। मित्रों, यहां पर अध्याय 9 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 10 से जारी रखेंगे। इसका मुख्य विषय है, यीशु 12 शिष्यों को अधिकार देते हैं और उन्हें इसराइल जाति के पास भेजते हैं कि उन्हें राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। यह अध्याय निरंतर उस चाल को बनाए रखता है जिसे हमने मत्ती रचित सुसमाचार में देखा था। प्रभु यीशु ने नैतिक बातों को दिया, वह पहाड़ से नीचे उतरा और अपनी सामर्थ को 12 चमत्कारों के द्वारा प्रदर्शित किया जिसे नाम लेकर बताया जा सकता है या गिना जा सकता है। अब वह शिष्यों को अधिकार देकर इसराइल जाति में भेजते हैं कि राज्य का सुसमाचार का प्रचार करें। मित्रों, इन मनुष्यों को किसी के आगे आगे नहीं चलने हैं परंतु आगे वाले के पीछे चलना है। हमारे प्रभु ने उन्हें चमत्कार करने की सामर्थ्य प्रदान की, यह उनका प्रत्यय पत्र था। क्या आपने ध्यान दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कोई चमत्कार नहीं किए? यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उनके पद में परिवर्तन किया गया है और वे शिष्य सीखने वाला से प्रेरित प्रतिनिधि में बदल गए। मित्रों, जैसे हम इस अध्याय में प्रवेश करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि कुछ गलत शिक्षा देने वाले लोग भी इस अध्याय में कुछ विक्षिप्त सेवकाई या व्यवहार के लिए अपने अधिकार के लिए आते हैं। आप देखिए कि हम इस अध्याय में मसीहियों के लिए कोई भी निर्देश नहीं पाते हैं। हमें यहाँ पर निर्देश को परिस्थिति और शर्त के प्रकाश में समझने की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत वे दिए गए हैं, और हम उसकी व्याख्या सही रूप में कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि 12 की नियुक्ति होती है और नाम भी रखे जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारी तथा सब प्रकार की दुर्बलता को चंगा करें। जैसे कि वे इसराइल जाति में गए तो जो अधिकार उसने उन्हें दिए थे वे उनके प्रत्यय पत्र थे। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि यह मसीह का प्रत्यय पत्र होगा। इस अधिकार को देने के बाद वे अब शिष्य नहीं रहे बल्कि प्रेरित कहलाए। हम मत्ती 10 अध्याय उसके 2-4 पद में आगे पढ़ते हैं। अब 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस, बर्तुलमै, थोमा और चुंगी लेने वाला मत्ती, हलफै का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। हम 12 का संदेश और तरीके को देखते हैं। हम मत्ती 10 अध्याय उसके 5-6 पद में आगे इस प्रकार से पढ़ते हैं। लिखा है, इन 12 को यीशु ने यह निर्देश देकर भेजा, गैर यहूदियों के पास न जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना, इसकी अपेक्षा इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। अब यदि आप इस अध्याय से अपना निर्देश व्यक्तिगत सेवकाई के लिए लेने जा रहे हैं तो आपको इसराइल जाति तक ही सीमित रहना होगा, क्योंकि यह इसराइल के घराने के उन खोए हुए भेड़ों को दिया जाना है। स्पष्ट रूप से इस पद में हमारा अधिकार नहीं बताया गया है। हमारे अधिकार की तुलना प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 पद के साथ करें। लिखा है, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, यहां तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। यहां पर ध्यान दें कि हमें सामरिया को भी शामिल करना है और पृथ्वी के छोर तक को, जबकि यीशु ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि सामरिया से दूर रहें और अन्य जातियों के मार्ग में भी न चलें, परंतु सिर्फ इसराइल के घर के उन खोए हुओं के पास जाने को कहा। और 12 का संदेश इस तरह होना चाहिए था जिसे हम मत्ती 10 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, और जाते हुए तुम प्रचार करके कहना, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह कैसे निकट आ गया है? यह निकट था राजा के व्यक्तित्व में, वह जो उनके मध्य में था। मित्रों, विक्टोरिया युग के समापन और शताब्दी के परिवर्तन के समय पूरे मसीह संसार में एक आशावाद का विचार सब महसूस कर रहे थे। उस समय सभी बड़े संप्रदायों ने एक निर्णय लिया कि वे पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य को बनाएंगे। प्रत्येक समूह ने सोचा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर से उनका ठेका या इकरारनामा है। वास्तव में कलीसिया को कभी भी राज्य बनाने के लिए नहीं बुलाया गया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं राज्य की स्थापना करेंगे जब वह पृथ्वी पर लौटेंगे। तब कलीसिया संसार से बाहर बुलाई हुई एक देह है कि मसीह को प्रदर्शित करे और उसके सुसमाचार को सारे संसार में प्रचार करे। राज्य का व्यवसाय हम में से किसी का व्यवसाय नहीं है। स्वर्ग का राज्य हम में है जब हम मसीह को ग्रहण या स्वीकार करते हैं। तब अब ध्यान दें कि यीशु 12 को बाहर भेजते हैं और उन्हीं प्रत्यय पत्रों के साथ जो स्वयं के पास था। हम मत्ती 10 अध्याय उसके 8 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने मुफ्त पाया है मुफ्त में दो। अब मैं आग्रह करता हूं कि यदि आप ऊपर दिए गए बातों में से एक भी करने जा रहे हैं तो आपको उन चारों को भी करने की क्षमता होनी चाहिए। इस पर ध्यान दीजिए कि इसमें मृतकों को जिलाना भी शामिल है। स्पष्ट रूप से यह उस समय और परिस्थिति के लिए लागू होता है जिसके अंतर्गत इसे दिया गया था। मित्रों, यह बहुत ही मजेदार बात है और हम ध्यान दें कि लोग हमारे दिनों में पद 8 को अपने अधिकार के रूप में उपयोग करते हैं और इसके अगले पद को नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने कभी भी अगले पद को उपयोग करते हुए नहीं सुना है। फिर भी यह एक साथ ही आ जाता है क्योंकि यह सब एक ही गट्ठर में होता है। तो मित्रों, यहाँ पर हमारा समय अब खत्म होता है, इसलिए आज हम अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले अध्ययन में इससे आगे के विषयों पर हम विचार करेंगे। तब तक प्रभु आप सबों को अपनी आशीष और शांति प्रदान करे।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है, शिफा है, शिफा है,
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है, लिखा है, लिखा है।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है,
यही कलाम में लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, यीशु ने उसको मारा है, यीशु ने खून बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है, यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, पढ़ के कलाम देख लो, 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 पढ़ के कलाम देख लो। डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से नहारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो, यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, यीशु यहोवा रफा है, यीशु खुदा का है बेटा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा हिंदी कार्यक्रम सत्यवचन। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल एवं नया नियम उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोता, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। अब आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, 9958820414। आप हमें ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर, यूं कहा था मरियम ने रोकर, यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर, यूं कहा था मरियम ने रोकर, यहाँ अगर तू है रब्बी होता, हमारा भाई लाजर न मरता। कहा यीशु ने, ए लाजर,
ए लाजर,
आ निकल कब्र से बाहर,
आ बाहर,
4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा।
पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम।